दसवीं शताब्दी से समाज में विभेद सृष्टि का आरंभ। भक्ति साधनाओं की चर्चा करते करते हम कुछ दूर तक चले आए। धार्मिक साधनाओं की ठीक ठीक जानकारी के लिए उस काल की सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी आवश्यक है। हमने पहले भी लक्ष्य किया है कि देश में नाना ऐतिहासिक कारणों से छूतछात और बहिर्विवाह का वर्जन बना हुआ है, परंतु दसवीं शताब्दी के आरंभ से इस भेद विभेद ने बहुत ही कठोर रूप धारण किया है। जब तक हमें उस कठोर रूप का ठीक ठीक परिचय नहीं मिलेगा, तब तक समझना कठिन होगा कि क्यों हजारों साधु संप्रदाय मध्य काल में बन गए, वैराग्य का ऐसा विकृत रूप क्यों हुआ। वस्तुतः जाति पाति का सिकंजा इतना कठोर था कि उससे बचने का एक ही उपाय रह गया, साधु हो जाना। अंत तक यह उपाय भी बहुत सफल नहीं सिद्ध हुआ। जो विविध संप्रदायों के संगठित होने में जाति प्रथा की कठोरता का मामूली हाथ नहीं था। यह विचित्र बात है कि जिस समय भारतवर्ष में जाति पाति को तोड़ने वाले संस्कृति ने प्रबल प्रताप के साथ आक्रमण करना शुरू किया और अंत तक इस देश में अपना शासन स्थापित करने में सफलता पाई, उस समय जाति पाति का बंधन और भी कठोर हो गया। इस विरोधाभास का कारण क्या है, तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थिति के सिंहावलोकन से ही उसका कुछ कारण समझ में आ सकता है। गुप्तों के बाद 550 ईस्वी में कान्य कुब्ज में मौखरी शक्तिशाली राजा हुए। बाद में श्रीहर्ष का बहुत सुसंगठित प्रभावशाली राज्य स्थापित हुआ। उसके सेनापति भंडी और उसके वंशजों ने भी इस भूभाग पर शासन किया, पर नवीं शताब्दी के प्रारंभ में उनकी शक्ति छीड़ हो गई। इन तीन शताब्दी में कान्य कुब्ज जब सब प्रकार से समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जब नवीं शताब्दी में इसके शासक भंडी एकदम अशक्त हो गए, तो भी राजलक्ष्मी कन्नौज छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस समय बंगाल में पालों का राज्य था, जो पहले कई बार इस राजलक्ष्मी को अपनी गृह लक्ष्मी रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न कर चुके थे। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शक्तिशाली राज्य था, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ था और उनकी और लगभग 225 वर्षों तक प्रबल प्रताप के साथ शासन किया था। कभी कभी उनकी तलवार गंगा यमुना के द्वाबे में भी झंझना उठती थी और कान्य कुब्ज राजलक्ष्मी को वरण करने के लिए तो इन लोगों ने भी कुछ उठा नहीं रखा। उधर पश्चिम भारत के प्रतिहार भी बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने भी कान्य कुब्ज को हथियाना चाहा था। इस प्रकार नवीं शताब्दी में कान्य कुब्ज की राजलक्ष्मी काफी खींचतान में पड़ी थी। सन 1815 में प्रतिहार नाग भट्ट ने कान्य कुब्ज पर अधिकार किया और उसी समय से कान्य कुब्ज की राजलक्ष्मी प्रतिहारों की हो रही। नवीं से 11वीं शताब्दी तक भारत की तीन प्रधान राज शक्तियां थी, कान्य कुब्ज के प्रतिहार, गौंड के पाल और मानिकहेड के राष्ट्रकूट। इनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा थी। उधर उत्तर पश्चिम सीमांत के मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया था। सिंध में उनकी जड़ भी जम चुकी थी। सन 1018 में प्रतिहार राजा राज्यपाल महमूद से पराजित हुआ और उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली। जान पड़ता है कि राजपूत राजाओं ने उसके इस आचरण को पसंद नहीं किया और कई अधीनस्थ राजाओं ने मिलकर उसे मार डाला और उसके पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। परंतु प्रतिहारों का सूर्य अस्त हो गया। केंद्रीय शक्ति के दुर्बल हो जाने के कारण कालिंजर के चंदेल, त्रिपुर या तेवार के कलचुरी और सांभर के चौहान स्वतंत्र हो गए। इसके बाद का काल राजपूत राजाओं के परस्पर विवाद और एक एक करके मिटने का काल है। ये राजे परस्पर भी जूझते रहे और मुस्लिम आक्रमण भी लोहा लेते रहे। त्रिपुरी के कलचुरियों में कर्ण नाम का अत्यंत प्रतापशाली राजा हुआ, जो संभवतः सन 1038 से 1080 ईस्वी तक राज्य करता रहा। उसने दक्षिण में चोल पांड्यों तक को जीत लिया और उत्तर में उसकी विजय ध्वजा काशी, कोशल और चंपारण तक फहराई। त्रिपुरी का ही अपभ्रंश रूप तेवार है। राजा कर्ण के साथ शांडिल्य गोत्रीय तिवारी ब्राह्मण आए, जो सरयू पार से अब भी श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। इन ब्राह्मणों की अनुश्रुतियों से जान पड़ता है कि ये भी मूलतः कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही हैं। राजा कर्णा ने सरयू पार में ब्राह्मणों को बहुत भूमि दान में दी थी। इसके लिए कुछ दान पत्र गोरखपुर जिले में पाए गए। कर्ण का राज्य इस इलाके में ज्यादा दिन टिक नहीं सका और ऐसा जान पड़ता है कि उसने जिन ब्राह्मणों को दान देकर इधर बसाया था, वे आगे चलकर राजाश्रय नहीं पा सके। ऐसा जान पड़ता है कि गोंड राजाओं के अभ्युदय के बाद इनमें से कुछ घर भी अपने पुराने निवास स्थान की ओर लौट गए। सन 1080 ईस्वी में कान्यकुब्ज और काशी तथा कर्ण के जीते हुए आसपास के प्रदेशों पर गाहड़वार वंशी राजा चंद्र का अधिकार हो गया। यह बहुत प्रतापशाली राजा था। महमूद के आक्रमण और राज्यपाल के पतन के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक के उस प्रदेश में, जिसकी भाषा आज हिंदी है, घोर अराजकता फैल गई थी। गाहड़वार वंश के शिलालेखों में गर्वपूर्वक स्मरण किया गया था कि श्री चंद्र देव ने अपने उदारतर प्रताप से प्रजा के अशेष उपद्रव का समन कर दिया था। येनो दारतर प्रताप शमिता शेष प्रजोपद्रवम। सो इस वंश के राजाओं को प्रजा में बड़े प्रेम से सिर माथे लिया। इस प्रकार कन्नौज, काशी और अवध तथा बिहार का कुछ हिस्सा गाहड़वार राजाओं के हाथ लगभग 200 वर्षों तक रहा। इस वंश के सबसे प्रतापशाली राजा गोविंद्र चंद 1114 से 1115 ईस्वी थे। एक तरफ तो उन्होंने दुर्दांत गौण राजाओं से लोहा लेना पड़ता था, जो मौका पाते ही कान्यकुब्ज को हड़प लेने को तत्पर रहते थे। इनके पास हाथियों की प्रचंड सेना थी। दूसरी ओर महमूद के सेनापतियों से निरंतर टक्कर लेनी पड़ती थी। गोविंद्र चंद के घोड़ों की टाप पंजाब के किनारे से लेकर बंगाल की पश्चिमी सीमा तक निरंतर सुनाई पड़ती थी। अपनी प्रशस्तियों में उसने अपने को उस भूमि का अधिकारी घोषित किया, जो उनके निरंतर दौड़ते रहने वाले घोड़ों के टाप की मुद्रा से मुद्रित थी। लगभग आधी शताब्दी तक इस प्रबल पराक्रांत राजा के शासन में उस एकता का सूत्रपात हुआ, जिसका आज भी हिंदी भाषी जनता उपभोग कर रही है। गोविंद चंद के काल में कान्यकुब्ज गौरव फिर से प्रतिष्ठित हुआ। इस राजा ने दक्षिण से बुलाकर बहुत से ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। विक्रमादित्य की भांति चंद्र भी संस्कृति के पक्षपाती थे। यद्यपि वे अपने को परम माहेश्वर कहते थे, तथापि उन्होंने विष्णु मंदिर भी बनवाए थे और विष्णु के वे भक्त भी थे। परंतु राजा के काल में प्रोत्साहन बराबर संस्कृत भाषा को और ब्राह्मण धर्म को मिलता रहा। जिस प्रकार गौड के पाल राजा और गुजरात के सोलंकी देश भाषा तथा मालवा के परमार देश भाषा को प्रोत्साहन दे रहे थे, उस प्रकार कोई प्रोत्साहन इस दरबार से नहीं मिल रहा था। अब तक 10वीं शताब्दी तक के जितने दान पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें ब्राह्मणों के केवल गोत्र और शाखाओं की ही चर्चा है। ऊपर बताया गया है कि कलचुरी राजा कर्ण ने कुछ दिनों के लिए काशी, सरयू पार और उत्तरी बिहार के चंपारण भूभाग पर राज किया था। सन 1077 ईस्वी का एक कलचुरी दानपत्र गोरखपुर जिले के काहल नामक ग्राम में प्राप्त हुआ, जिसमें प्रथम बार ब्राह्मणों के गोत्र प्रवर के साथ गांव का नाम भी उल्लेख है। यहां प्रदेश का नाम नहीं मिलता, संभवतः वह बिना निर्देश के भी समझ लिया जाता था। उन दिनों केवल गांव का नाम मिलता है। सरयू पारी ब्राह्मणों के आज भी गांव के नाम से परिचय देने की प्रथा है, जो संभवतः त्रिपुर या तेवार के स्मृति रूप में जी रही हैं। संवत 1116 अर्थात सन 1109 ईस्वी के गोविंद्र चंद्र वाले दान पत्र में भी गुड़चंद्र के भट्ट ब्राह्मण गांगू का पत्र, रीले का पुत्र और भट्ट कवण ग्राम का निवासी बताया गया है। बाद में यह प्रथा खूब तेजी से चली। इसके बाद की प्रशस्तियों में देश का नाम भी जुड़ा मिलता है। गुजरात के कुमारपाल की प्रशस्ति सन 1151 ईस्वी में नागर ब्राह्मण का उल्लेख है। गाहड़वालों के दान पत्रों में ठक्कुर और राउत ब्राह्मणों की चर्चा मिलती है। राउत शब्द से ध्वनि निकलती है कि ये ब्राह्मण कभी राजपुत्र का सम्मान पाने वाले थे। महमूद के आक्रमण के पहले गजनी और कश्मीर में ब्राह्मणों के राज थे और पंजाब में ब्राह्मण राजा थे। संभवतः ऐसे ही किसी राजवंश के ब्राह्मण राउत कहे जाते होंगे। जो हो, ये उपाधियां प्रदेशवाचक नहीं कही जा सकती। यद्यपि इनमें भी पुराने गौरव की स्मृति बचाने का प्रयत्न जो विभेद का एक कारण बना रहा है। इस काल के बाद गोत्र और प्रवर का स्थान गौण हो जाता है और प्रदेशवासी विशेषण प्रधान हो जाता है। सन 1226 ईस्वी में एक परमार दान पत्र में पंडित दीक्षित द्विवेदी, चतुर्वेदी, आवृथक आदि उपाधि युक्त नाम मिलने लगते हैं। और सन 1177 ईस्वी के जयचंद्र के दान पत्र में प्रथम बार ब्राह्मणों के नाम के आगे सम्मान सूचक पंडित शब्द का व्यवहार पाया जाता है। कई जगह केवल उसका संक्षिप्त रूप पंडित मिलता है, जो आज भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसी समय से ब्राह्मणों के अनेक जातिवाचक विशेषणों का प्रयोग मिलने लगता है। जहां पहले गोत्र और प्रवर ही व्यावर्तक समझे जाते थे, वहां अब देशवाचक, अध्ययन सूचक, ग्राम निर्देशक और सम्मान सूचक विशेषणों की चर्चा आने लगती है। परवर्ती काल में दूबे, चौबे, मिसित, सुकुल, उपाध्याय, नागर, गौड़ आदि विशेषणों में इन्हीं विभिन्न अर्थ के विशेषणों का प्रयोग है। 11वीं-12वीं शताब्दी के दान पत्रों में इन विशेषणों का प्रयोग पहले बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता है, बाद में अनिवार्य रूप में आने लगता है। ऊपर जयचंद्र देव के जिस दान पत्र की चर्चा की गयी है, उसमें एक ब्राह्मण के नाम के साथ द्विवेदी उपाधि है। एपिग्राफिका इंडिका की 19वीं जिल्द में छपे एक दान पत्र में एक उपाधि कर्णाट द्विवेदी ठक्कुर है, जो प्रदेश, विद्या और पूर्ववर्ती अधिकार तीनों की सूचना देता है। इस प्रकार इस काल में पढ़े लिखे ब्राह्मणों का प्रयत्न यह था कि वे अपनी पूर्ववर्ती भूमि की स्मृति बनाए रखें और अपने इर्द गिर्द की जनता से अपने को विशेष समझते रहें। यही हाल उन क्षत्रिय राजाओं का भी था, जो बाहर से आकर नया राज अधिकार कर लेने के बाद स्थानीय लोगों से अपने को भिन्न और श्रेष्ठ मानते थे। उत्तरी भारत पर निरंतर विदेशी जातियों के हमले होते रहे और राजलक्ष्मी ने पुराने क्षत्रियों का साथ कई बार छोड़ दिया था। ये क्षत्रिय कृषि और कारोबार में लग गए थे। आजकल के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में बसने वाली अधिकांश बनिया जातियां इन्हीं हारे हुए क्षत्रियों की वंशज हैं। इन कृषिजीवी और तुलाजीवी जातियों से अपनी भिन्नता बताने के लिए ही राजपुत्र और राजपूत विशेषण का उद्भव हुआ। इस प्रकार संयोगवश काशी कान्य कुब्ज की शासक जाति भी अपने को जनता से भिन्न श्रेष्ठ समझती थी। परिणाम यह हुआ कि 9वीं शताब्दी के प्रतिहार राजाओं से आरंभ करके 12वीं शताब्दी तक शासन करने वाले गाहड़वार राजाओं तक के लोक भाषा और डोक जीवन की उपेक्षा की। संस्कृत को इस दरबार में पर्याप्त मान मिला और इस काल में काशी भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी बनी रही। यहाँ के पंडितों के लिखे निबंध ग्रंथ भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों के अधिवासियों के लिए मार्गदर्शक होते रहे। गाहड़वार राजा यद्यपि अपने को माहेश्वर कहते थे, पर वे उतने ही वैष्णव भी थे। वे लक्ष्मी के उपासक थे। उनकी प्रशस्तियों के आरंभ में लक्ष्मी की स्तुति हुआ करती है। यह स्तुति घोर श्रृंगारी भाषा में है, जो उस काल की भक्ति के स्वरूप की सूचना देती है। वस्तुतः लोग स्मार्त थे। इनके काल में काशी स्मार्तों का केंद्र बनी और माहेश्वरपुरी भी बनी रही। इस प्रदेश के ब्राह्मणों की प्रतिभा का उत्तम रूप हमें संस्कृत साहित्य में मिल जाता है, पर देश की साधारण जनता की बोलचाल की भाषा में क्या लिखा जाता रहा था, इसका कोई परिचय नहीं मिलता। इस प्रदेश के बाहर के छिटके फुटके प्राप्त साहित्य के आधार पर ही कुछ अनुमान किया जा सकता है। महमूद ने कई बार आक्रमण करके उत्तरी भारत को आतंकित कर दिया था, इसलिए धर्म भीरु ब्राह्मण परिवार उत्तर भारत को छोड़कर ऐसे स्थानों में जाने का प्रयत्न करने लगे जहां उन्हें संरक्षण प्राप्त हो सके और वैदिक यज्ञ याग की क्रिया निर्विघ्न चलती रहे। राज्यपाल के पराजय के बाद अंतर्वेद में अराजकता फैल गई थी। इस क्षेत्र के ब्राह्मण सदा सदा उत्तम और पवित्र माने जाते थे। बंगाल के सामंत या वल्लाल सेन ने, जिसका राज्यकाल संभवतः 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं के आरंभ में था, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को अपने देश में बसाया। उड़ीसा के केसरी राजाओं ने भी कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को अपने राज में बसाया। इसी प्रकार गुजरात के राजा मूल राज और दक्षिण के चूल राजाओं के बारे में भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने उत्तर के ब्राह्मणों को बुलवाया था। कुछ ब्राह्मण अपनी इच्छा से दूर दूर जाकर बसे। इस प्रकार इस काल में एक और ऐसा देश जहां देश की राजशक्ति खंड विच्छिन्न होने लगी, वहां वेदाध्यायी और संस्कृति विद्या के संरक्षक ब्राह्मणों का भी नाना स्थानों में विभाजन होने लगा। नए प्रदेशों में बसे ब्राह्मण अपने को उस स्थान के लोगों से भिन्न समझने लगे और अपने मूल निवास स्थान की स्मृति बनाए रखने के लिए अपने नामों के साथ अपने प्रदेशों के नामों का भी उल्लेख करने लगे। राज्यों के उलटफेर के साथ इन ब्राह्मणों को स्थान बदलना पड़ता था, इसलिए वे भी दृढ़ता के साथ अपने मूल वास स्थानों की स्मृति अपने नाम से जोड़े रहना चाहते थे। दक्षिण उन दिनों अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान था, इसलिए उत्तर के अनेक ब्राह्मण परिवार दक्षिण की ओर चले गए और उधर ही रहने लगे। अवस्था परिवर्तन के साथ साथ इनमें से कुछ फिर उत्तर की ओर आ गए। इनके साथ अपना भेद बताने के लिए उत्तर के पुराने ब्राह्मणों ने भी नए विशेषण जोड़े। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनेक उपजातियां और भेदापभेद बनते गए। क्षत्रिय शक्ति भी निरंतर विभाजित हो रही थी और उन उच्च वर्णों के इस प्रकार भेदोपभेद जनित सावधानी का असर निचली श्रेणियों पर भी पड़ रहा था। इस प्रकार 10वीं शताब्दी के बाद जाति पाति की व्यवस्था तेजी से दृढ़तर होती गई और निरंतर भेद विच्छेद की ओर देश को ढकेलती चली गई। इस प्रकार यह एक विचित्र सी बात है कि जाति पाति को तोड़ने वाले संस्कृति के आक्रमण ने इस देश के समाज में जाति पाति का भेदभाव और भी अधिक बढ़ा दिया।